कैसी आत्मा की भी तृप्ति
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह का वचन ही वो सत्य वचन है जो हमें आत्मिक सामर्थ और शांति देता है और अंधकार में भटकने से हमें बचाता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए आज के वचन को ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
आपको हमारा नमस्कार। आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के इस सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम पुराने नियम से दूसरी राजाओं की पुस्तक का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके पांचवें अध्याय को आरंभ करेंगे। पांचवें अध्याय का शीर्षक है सीरिया देश का सेनाध्यक्ष नामान। मित्रवर, एलिशा भविष्यद्वक्ता के जीवन से संबंधित यह अध्याय पांच अत्यंत रुचिकर अध्याय है। इसमें हमें अत्यंत रुचिकर दृश्य और चरित्र देखने को मिलेंगे। उन्हीं में कहीं हमारा चरित्र भी छिपा होगा। हम उससे भी अपने लिए एक विशिष्ट शिक्षा व संदेश प्राप्त करेंगे। सो आइए अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। इससे पूर्व के कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी और आत्मिक सहायता के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि आप इस वचन को समझने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करें, हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी संकट में है या क्लेश में है, प्रभु आप उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, हमारा विषय है नामान की चंगाई। इसके लिए हम देखेंगे दूसरा राजा, उसका पांचवा अध्याय। दूसरा राजा पांचवा अध्याय 1-7। दूसरा राजा पांचवा अध्याय 1-7। इन पदों में इस प्रकार से लिखा है, सीरिया के राजा की सेना का नामान नाम एक सेनापति था। वह राजा की दृष्टि में महान और प्रतिष्ठित था, क्योंकि उसके द्वारा यहोवा ने सीरिया को विजय दी थी। वह बड़ा शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अब ये इस व्यक्ति की दो अलग अलग योग्यताएं थीं। एक ओर तो वह एक शूरवीर व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, दूसरी ओर वह कोढ़ी था। सीरियाई दल इसराइल में गए और एक बालिका को बंदी बनाकर ले गए। वह नामान की पत्नी की सेवा टहल करती थी। अब जिस समय इसराइल सीरिया की बंधुआई में गया, उस समय बहुत से लोग सीरिया में चले गए और ऐसी अवस्था में एक बालिका थी जो वो भी बंधुआई में गई थी। वो नामान की पत्नी की सेवा टहल करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, काश मेरा स्वामी सामरिया के नबी के पास होता, वह उसे उसके कोढ़ से चंगा कर देता। इस छोटी सी बालिका ने एक महान संदेश सीरिया के सेनापति तक पहुंचा दिया। मित्रवर, प्रथम पद में नामान का साधारण सा उभरता हुआ चित्र हमें दर्शाया गया है। वह सीरिया की सेना का सेनापति था, वह अन्य जाति व्यक्ति था, तो भी वह महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसके द्वारा परमेश्वर ने सीरिया देश को छुटकारा प्रदान किया था, और ये वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयोग किया। और आप देखेंगे कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को अपने लिए प्रयोग कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि वह मसीही हो या यहूदी ही हो। संभवतः आप मेरी बात से सहमत ना हो और मेरी बात आपको विचित्र सी जान पड़े, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा ही बताता है। आपको अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं। फिरौन को ले लीजिए, राजा नबूकदनेस्सर तथा कुस्रू व सिकंदर महान को देखिए। ये लोग परमेश्वर के द्वारा प्रयोग किए गए, यद्यपि ये सभी अन्य जाति लोग थे। और यहां हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने नामान को प्रयोग किया। उन्होंने नामान के द्वारा सीरिया को विजय दी। फिर यहां पर हमने दूसरी बात देखी कि इस व्यक्ति को कोढ़ था। बाइबल पवित्र शास्त्र में कोढ़ गंभीर पाप का सूचक है। ये एक प्रकार का पाप है। उसका एक कारण यह है कि यह मानव प्रयास द्वारा उपचार के योग्य नहीं है। मानव इसका उपचार कर ही नहीं सकता। केवल परमेश्वर ही कोढ़ का उपचार कर सकते हैं। केवल वही रोगी को शुद्ध कर सकते हैं, परंतु कोढ़ी को शुद्ध करके उस पापी को नाश होने से बचा सकते हैं। नामान में अनेक अच्छी बातें थी, अच्छे गुण थे, परंतु वह कोढ़ी था। उसने वर्षों अपने पाप को ढांपने का प्रयास किया, परंतु वह चंगा ना हो सका। श्रोता, नामान की तरह अनेक लोग पापों पर सफेदी करना चाहते हैं, उन्हें ढांपना चाहते हैं, परंतु आवश्यकता है कि आप पापों से छुटकारा पाएं, आपके पाप मिट जाएं, धुल जाएं, आप एक नए व्यक्ति बन जाएं। मित्रवर, पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत से गुमनाम व्यक्ति हैं। उनमें से एक ये इसराइली बालिका भी है। ये एक साधारण सेविका है, परंतु महान कार्य किया इसने। मेरे लिए तो ये भी रानी एस्तर, रूथ, बैतशेबा, सारा और रेबेका से कम नहीं है, क्योंकि इसने प्रदेश में जीवित परमेश्वर की साक्षी दी और नामान की मुक्ति का कारण बनी। ये छोटी सी बालिका नामान की पत्नी की सेवा टहल करती थी, और ये सेविका थी, इसलिए आज्ञा देने का इसको अधिकार नहीं था। इसलिए वह आह भर कर कहती है, काश मेरा स्वामी सामरिया के नबी के पास होता तो वह उसे चंगा कर देता। और हम देखते हैं कि एलिशा की अच्छी प्रसिद्धि थी। उस बालिका की बात को सेनापति नामान तक पहुंचा दिया गया। नामान तो चाहता ही था कि वह इस घृणित रोग से छुटकारा प्राप्त करे। उसने अपने राजा से इस विषय में बात की। चौथे पद में हम देखते हैं कि सीरिया का राजा तो चाहता था कि उसका ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति इस गंभीर रोग से छुटकारा पाए, और वह उसे तुरंत एक पत्र तथा बहुमूल्य भेंटों के साथ इसराइल के राजा के पास भेज देता है। अब दृश्य बड़ा रुचिकर है। इसराइल के राजा की दशा देखने योग्य है। आइए आप भी देखिए। ऐसा हुआ, जब इसराइल के राजा ने यह पत्र पढ़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, क्या मैं मारने और जिलाने वाला परमेश्वर हूं कि यह मनुष्य संदेश भेज रहा है कि मैं इस आदमी को इसके कोढ़ से चंगा करूं? पर अब विचार कर देखो, वह मेरे विरुद्ध झगड़े का बहाना ढूंढ रहा है। मेरे मित्र, सीरिया के राजा ने के पत्र ने इसराइल के राजा को परेशान कर दिया। वो बुरी तरह से बौखला रहा है। वो कहता है, क्या मैं परमेश्वर हूं जो चंगाई दे सकूं? मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं चंगाई नहीं दे सकता। श्रोता, संदेश गलत व्यक्ति के पास पहुंच गया था। वास्तव में संदेश पहुंचना था एलिशा के पास। इसराइल का राजा सोचता है कि सीरिया का राजा मेरे विरुद्ध झगड़े का बहाना खोज रहा है। वो मुझसे असंभव कार्य करने को कह रहा है। उसको इसराइल के जीवित और सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं था। इसराइल का राजा ये नहीं जानता था कि इसराइल का परमेश्वर ये कार्य कर सकता है, और इसलिए वह राजा के पत्र का गलत अर्थ लगाता है। कोढ़ से चंगाई तो संभव नहीं हो सकता। इसराइल के राजा ने अपने परमेश्वर हीनता को प्रकट किया, अविश्वास प्रकट किया, यहोवा का अपमान किया, और ये बात एलिशा के कान तक पहुंची। उसने कहा, नामान को मेरे पास भेज दो, मैं उसे कोढ़ से चंगा करूंगा। और ये कार्य परमेश्वरहीन राजा के बस का भी नहीं था। जी हां मित्र, ये तो परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य था। तब हम अग्रिम पदों में पढ़ते हैं एलिशा क्या करता है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर के जन एलिशा ने सुना कि इसराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, तो उसने इसराइल के राजा को संदेश भेजा, तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं, अब उसे मेरे पास आने दे, तो वह जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। तब नामान अपने रथों घोड़ों सहित आकर एलिशा के घर के द्वार पर खड़ा हुआ। तब एलिशा ने एक दूत से संदेश भेजा, जा यर्दन में 7 बार स्नान कर, तब तेरा शरीर चंगा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। मित्रवर, एलिशा द्वारा नामान की चंगाई, ये बड़ा रुचिकर वृतांत है। नामान उत्तर के महान राज्य का सेनापति था। सीरिया उस समय इसराइल से अधिक शक्तिशाली देश था और इसराइल को अपने अधिकार में कर चुका था। बहुत से इसराइली वहां उसके दासत्व में थे। नामान का विचार था कि एलिशा के द्वारा उसका भव्य स्वागत किया जाएगा, परंतु हुआ क्या, एलिशा ने एक दूत के द्वारा नामान से कहला भेजा, जा यर्दन में 7 बार गोते लगा। निसंदेह इस बात से नामान के आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंची होगी। एलिशा ने वास्तव में बड़ी बदतमीजी से उसका स्वागत किया, और सच तो यह है कि एलिशा ने उसे कोई महत्व ही नहीं दिया, उसने उसका स्वागत भी नहीं किया, उसने घर में बैठे बैठे ही संदेश भेज दिया। अब आपका भी यही विचार होगा कि एलिशा उठता और सीरिया की सेना के इस महान सेनापति के सामने झुकता और दंडवत प्रणाम करता, परंतु सब कुछ आशा के विपरीत हुआ। अब आपका क्या विचार है, क्या नामान एलिशा की बात स्वीकार करेगा? 11वें पद को देखें, परंतु नामान अत्यंत क्रोधित हुआ और ये कहते हुए चला गया, देखो मैंने तो सोचा था कि वह निश्चय मेरे पास आएगा और खड़े होकर यहोवा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर मेरा कोढ़ दूर कर देगा। मेरे मित्र, नामान की मना स्थिति अस्त व्यस्त हो गई है और उसकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया है। नामान एलिशा नबी के व्यवहार से झुंझला उठा है, किंतु क्यों? क्योंकि वह एक अहंकारी व्यक्ति था और इसीलिए परमेश्वर ने उसके शरीर में एक कांटा चुभा रखा था कि वह अपनी योग्यताओं और गुणों के कारण फूल न उठे। परंतु हम देखेंगे कि परमेश्वर उसके दोनों रोगों को चंगा करने जा रहे हैं, वह उसके कोढ़ तथा घमंड दोनों का उपचार करने जा रहे हैं, वह उसकी आत्मा तथा शरीर दोनों का उपचार करने जा रहे हैं। प्रिय मित्र, जब परमेश्वर पिता किसी को बचाते हैं तो वह उसके जीवन से उन बातों को निकाल बाहर करते हैं जो परमेश्वर का विरोध करती हैं। वो उसको आत्मा और शरीर दोनों में चंगाई देते हैं और नामान के जीवन में वह वस्तु है घमंड, अहंकार, जो उसका आत्मिक रोग है। और हम देखेंगे कि परमेश्वर पिता किस प्रकार से उसे चंगा करते हैं। 12वां पद देखें, नामान कहता है, क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इसराइल के सारे जलाशयों से उत्तम नहीं? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? सो वह क्रोधित होकर लौट गया। ये पद नामान के अहंकार को प्रकट करता है। हम नामान की बात से सहमत हैं, यर्दन नदी लिबनान की नदियों से अधिक सुंदर नहीं है, तो फिर यर्दन ही में क्यों 7 गोते लगाए जाएं? क्या मैं अपने देश की नदियों में नहाकर शुद्ध नहीं हो सकता? मेरे मित्र, यहां हमारे लिए एक संदेश है। आज एक विशाल जन समूह मसीह के क्रूस के समीप आने से घृणा करता है। यह निंदा व अपमान का स्थान है। लोग क्रूस के निकट आना नहीं चाहते, इसके स्थान पर वे कोई महान व कठिन कार्य करना चाहते हैं, और नामान भी उन्हीं में से एक था। नामान की भी यही समस्या थी। वो भी कुछ ऐसा ही विचार रखता था कि मेरे लिए कोई महान कार्य किया जाए। ओह, जरा नामान का घमंड तो देखिए। कहता है, क्या मेरे देश की नदियां इसराइल की नदियों से उत्तम नहीं? नामान परमेश्वर के नबी की बात पर क्रोधित हो गया। वह अपने वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है, परंतु मेरे मित्र, आपको क्रूस के पास आना ही होगा। आपको नम्र और दीन बनना ही होगा। आप कब तक अपने पाप को छिपाएंगे? आपको अपने पाप को प्रकट ही करना होगा। आपके पाप के गहरे धब्बे और किसी भी साधन से मिट नहीं सकते। नामान को यर्दन ही में स्नान करना होगा आप एक अहंकारी के रूप में मसीह के पास नहीं आ सकते मित्र। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस वस्तु विशेष के आधार पर मसीह यीशु के समीप गया था। नहीं मित्र, आप अपनी चंगाई के लिए, अपनी आत्मिक चंगाई के लिए किसी भी वस्तु को आधार नहीं बना सकते। आप ये कह नहीं सकते कि मैं इस वस्तु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तक गया। नहीं मित्र, कदापि नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही मसीह के पास आ सकते हैं, इस विश्वास को लेकर कि प्रभु यीशु मसीह आपके केवल आपके द्वारा ही मेरी मुक्ति है। मसीह का रक्त प्रत्येक मानव प्राणी के लिए उनके पापों से मुक्ति के लिए बहाया गया है, परंतु आपको केवल विश्वास द्वारा मसीह के क्रूस पर किए गए इस महान कार्य को स्वीकार करना है और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मोक्षदाता ग्रहण करना है। 13वें पद में हम पढ़ते हैं, नामान अत्यंत क्रुद्ध है किंतु उसके सेवक उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे हमारे पिता, यदि नबी तुझे कोई कठिन कार्य करने को कहता तो क्या तू ना करता? तो जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो इसे कितना और ना मानना चाहिए। मेरे मित्र, आज भी लोग अपनी मोक्ष के लिए बड़े बड़े कर्मों पर निर्भर कर रहे हैं। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको मात्र विश्वास करना है। नामान को परमेश्वर के समीप एक निर्बल भिखारी के समान आना है, उसे विश्वास करना है, उसे आज्ञा पालन करना है। उसको एक भिखारी के रूप में आना है, पापी के रूप में आना है, एक सेनापति के रूप में नहीं। तब 14वें पद में हम पढ़ते हैं, अतः उसने जाकर परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार यर्दन में 7 बार डुबकी लगाई और उसकी देह छोटे बच्चे की देह के समान हो गई और वह शुद्ध हो गया। प्रिय मित्र, नामान अपने सेवकों द्वारा समझाए जाने पर यर्दन में जाकर 7 बार गोते लगाता है। वह एलिशा के निर्देश के अनुसार करता है और संभवतः 6ठे गोते तक उसे प्रतीत होता होगा कि एलिशा ने मेरा उपहास किया है, मेरा ठट्टा किया है, ये सब मूर्खता है। किंतु उसका बदन वैसे का वैसा ही था, परंतु जब उसने 7वां गोता लगाया, 7वां गोता लगाते ही क्या हुआ? उसकी देह छोटे बच्चे की देह के समान हो गई और वह कोढ़ से शुद्ध हो गया। परमेश्वर की स्तुति हो। मित्रवर, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही होगा। परमेश्वर की आज्ञा है कि जगत मसीह के बलिदान तथा पुनरुत्थान पर विश्वास लाए, ताकि नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। मित्रवर, हम देखेंगे कि जब इस व्यक्ति ने आशीष पाई, ये शुद्ध हो गया, तो इसने एक बड़ी साक्षी दी है, इसने शपथ खाई है। 17वें पद को देखिए, तब नामान ने कहा, यदि ऐसा नहीं तो तेरे दास को कम से कम 2 गधे मिट्टी मिले, क्योंकि तेरा दास अब से यहोवा के अतिरिक्त अन्य किसी देवता के लिए ना तो होम बलि चढ़ाएगा और ना बलिदान। और इस प्रकार से उसने सर्वदा यहोवा परमेश्वर की उपासना करने के लिए शपथ ली, वाचा बांधी कि वह हमेशा परमेश्वर की आराधना करेगा। अग्रिम पदों में हम देखेंगे गहेजी का पाप तथा उसका दंड। गहेजी एलिशा का सेवक है। कोढ़ से चंगाई प्राप्त करने के कारण नामान एलिशा का हार्दिक आभारी हुआ है। वो उसके बदले में कुछ भेंट देना चाहता है और उसने एलिशा पर दबाव डालने का प्रयास किया, परंतु एलिशा परमेश्वर द्वारा किए गए इस महान कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई दान या भेंट, उपहार और भुगतान स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ जैसे लिखा है 15वें पद में, तब वह अपने दल सहित परमेश्वर के जन के पास लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, देख, अब मैं जान गया हूँ कि इसराइल को छोड़ सारी पृथ्वी भर में कहीं कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब कृपा कर अपने दास की भेंट ग्रहण कर। किंतु एलिशा ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ ना लूंगा। और उसने उससे बहुत आग्रह किया कि उससे ले ले, पर उसने इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से एलिशा ने अपनी सेवा के लिए, सेवा के बदले में कुछ नहीं लिया, क्योंकि एलिशा जानता है कि नामान की चंगाई परमेश्वर द्वारा हुई है, मेरे द्वारा नहीं। और इसलिए वह उससे कुछ भी लेने से इनकार कर देता है। परंतु हम आज अनेक सेवकों व प्रचारकों का व्यवहार एलिशा के विपरीत पाते हैं, और हम पाते हैं उनका व्यवहार एलिशा के सेवक के समान। सो आइए देखें कि उसका सेवक क्या करता है। 20वें पद को देखें। परंतु परमेश्वर के जन एलिशा के सेवक गहेजी ने सोचा, देखो मेरे स्वामी ने उस सीरियाई नामान को यूं ही छोड़ दिया, जो कुछ वह लाया था उसको उसके हाथ से नहीं लिया। यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले ही लूंगा। इसलिए गहेजी नामान के पीछे दौड़ा। जब नामान ने किसी को अपने पीछे दौड़ते देखा तो उसने उससे मिलने को उतर कर पूछा, सब कुछ कुशल तो है? उसने कहा, सब कुशल है, मेरे स्वामी ने मुझे ये कहने भेजा है, देख एप्रेम के पहाड़ी देश से नबियों के दो चेले मेरे पास आए हैं, कृपया उनके लिए एक तोड़ा चांदी और दो जोड़े वस्त्र दे दे। अब ये गहेजी नामान से झूठ बोलता है और झूठ बोलकर कुछ उपहार प्राप्त करना चाहता है। नामान ने उससे कहा, खुशी से दो तोड़े ले ले। उसने उससे आग्रह करके दो तोड़े चांदी अलग अलग थैलियों में बांधी और उसके साथ दो जोड़े वस्त्र रखकर अपने दो सेवकों को दिया और वे उसके लिए आगे आगे ले चले। तब आगे हम देखते हैं 25वें पद में, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ और एलिशा ने उससे पूछा, गहेजी तू कहाँ गया था? उसने कहा, तेरा सेवक तो कहीं नहीं गया। तब उसने उससे कहा, क्या मेरा हृदय उस समय तेरे साथ ना था जब वह मनुष्य तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा? क्या ये अवसर, धन, वस्त्र, जैतून की बारी, दाग की बारी, भेड़, बैल, दास, दासी लेने का है? और तब एलिशा उससे कहता है, हे गहेजी, इसलिए नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम्स सा श्वेत हो गया, अर्थात कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। मित्रवर, गहेजी ने ऐसा क्यों किया? उसने नामान से उपहार क्यों मांग लिया? मेरे मित्र, इसका एक ही उत्तर है, लोभ। जी हां, लोभ के कारण उसने ऐसा किया। उसने झूठ भी बोला और इसलिए उसको उसके पाप की उचित व सही सजा मिल गई, उचित दंड मिल गया। मेरे मित्र, नामान का पाप था अहंकार तथा गहेजी का पाप था लोभ। लालच अर्थात लोभ आत्मा का कोड़ है, हमें इससे चंगाई की आवश्यकता है। निराश ना होइए, आज भी कैलवरी के क्रूस से एक पवित्र नदी बह रही है, उसमें आपकी आत्मा का कोड़ शुद्ध हो सकता है। विश्वास से आइए और उसमें स्नान कीजिए। मित्रवर, हमारा विश्वास है कि आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम से आपको अवश्य ही लाभ पहुंचा है। हमारा विश्वास है कि आप प्रतिदिन इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। किंतु यदि आपके मन में कोई विषय है, कोई प्रश्न है, कोई संदेह है, तो आप हमें अवश्य लिखकर भेजें, हम आपकी सहायता करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि किसी विषय के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप वो विषय भी हमको लिखकर भेज सकते हैं, ताकि हम परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आप उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की, उस सृष्टिकर्ता की सामर्थ को अपने जीवन में देख सकें। अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
मुझको मसीह पहुंचाता है।
प्रिय श्रोताओ, अभी आपने हमारा ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन सुना। निश्चय ही हमारा ये बाइबल अध्ययन आपके जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। यदि आप परमेश्वर की भली और सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, एक बार हम फिर से बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi.ttb@radiovv.org, hindi.ttb@radiovv.org। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। Thank you.